सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरिरामामुरभव नमे या पद समान को अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अवकिरपामो पर करहु यो हरिदेव कहंत। प्रसंग चल रहा था महात्माओं के पास जाओ कल्याण की इच्छा करो। महात्माओं के पास जाने से और उनकी आज्ञा पालन करने से कल्याण होता है। कल्याण की इच्छा से उनके पास चले जाए, उनकी बात को ध्यान से माने तो निश्चित कल्याण है। कभी कभी महात्मा उल्टी पुल्टी बात भी कहते हो तो हमारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा के पास जाते हैं, जिक्र चलता है, महात्मा कहते हैं तुम हमारे आश्रम को बदनाम करते हो, एक महीने के लिए मत आना। सब कहते हैं महाराज वो तो बड़ा श्रद्धालु था, वो तो आपके वियोग में मर जाएगा। फिर भी महात्मा बोले नहीं, वो यहां आने लायक नहीं है, बड़ा मूर्ख है। फिर वो लोग बोले कि महाराज इसने तो कोई मूर्खता की बात ही नहीं की। ये तो आपने ठीक नहीं किया। फिर भी आदमी जाकर उससे बोले कि ले देख ले, तू जिनको बड़ा भारी समझता था, तुम कहते थे कि ये तो परमात्मा के रूप है, देख लिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। फिर भी श्रद्धालु कहता है नहीं नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, हमें क्या पता हमसे क्या गलती होती है, वो सब जानते हैं, वो हमको समझाएंगे, वो अपनाएंगे, उन्होंने मेरे सुधार के लिए किया है, उन्होंने कोई किसी प्रकार अनुचित नहीं किया है, हमारी तो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ी है। वो महात्मा से लाभ ले सकता है और वो बोलता है कि देखो थोड़ा ही दंड दिया है, मेरा कोई ज्यादा ही अपराध हुआ होगा, हम अपराध को क्या बताएं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना भक्ताय कदाचन है, अभक्त को कुछ कहना नहीं चाहिए। तुम लोगों की उस महात्मा में श्रद्धा नहीं है, मैं तुमको उनके विषय में नहीं कहता। हमारे मन में कोई किसी प्रकार विचार नहीं है। महात्मा के पास जाने पर उनसे हम आदर की इच्छा रखें और उनसे कल्याण भी चाहे, ये दो बात नहीं है, एक ही इच्छा करनी चाहिए। आदर की इच्छा करोगे तो कल्याण से वंचित रह जाओगे, कल्याण की इच्छा करोगे तो उनका किया हुआ सारा व्यवहार अच्छा लगेगा। कितना ऊंचा भाव है। भगवान कहते हैं मन मनाभाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं तुम सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, तो धर्म को छोड़ने का अर्थ है धर्मों का आश्रय छोड़कर। इससे भी बढ़कर कोई बात हो सकती है क्या? हम तो कहते हैं अर्जुन कोई बहुत बड़े श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं थे। अर्जुन कोई उस समय के सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं थे और बहुत बढ़कर भक्त हुए ऐसी बात भी नहीं है। अर्जुन कोई बहुत बढ़े चढ़े भक्त हो ऐसी बात नहीं, और भी कई भक्त थे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि गोपियां जिस प्रकार तत्व को जानती है वैसा कोई नहीं जानता, इसलिए कैसे बढ़कर है। भगवान ने अर्जुन को कहा मन मना भाव, ऐसा तो केवल गोपियों का ही भाव था, अर्जुन का भाव कहाँ था। मुझे ये कहे कि तुम सूर्योदय से पूर्व उठा करो तो मैं हंसूंगा कि ये जानता नहीं। तो भगवान गोपियों को ऐसा उपदेश नहीं कर सकते। गोपियां अर्जुन से बहुत ऊंचे दर्जे की थी, क्यों? क्या पता कि अर्जुन इतने ऊंचे भगत नहीं थे। गहराई से सोचो, जो बहुत बड़ा श्रद्धालु होता है उसके सामने ये नहीं कहा जा सकता कि मैं तुम्हें सत्य विश्वास दिलाता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ये बात उनको नहीं कही जाती। खास बात है, अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इसका अर्थ है कि अर्जुन इतने बड़े श्रद्धालु नहीं थे। गोपियों के सामने भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इन क्या कहना है। गोपियां तो आत्म रूप थी। अर्जुन को भगवान ने क्या खोद खोद के बातें कह रहे हैं सेठ जी। अर्जुन को भगवान ने कहा तू शोक मत कर, ऐसा क्यों कहा? यदि अर्जुन बहुत ऊंचे दर्जे का भक्त होता और वो भगवान के प्रभाव को जानता ही, और जब भगवान के प्रभाव को जानता तो उसके अंदर शोक ही नहीं हो सकता था। जब उसमें शोक हुआ है तो वो कोई बहुत ऊंचा भगत नहीं था। भगवान को ये कहना पड़े कि तू शोक मत कर, पापों से मैं छुड़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता। और सुनो, बहुत ऊंची श्रेणी के भक्त तो पापों से माफी कभी नहीं चाहते। वे तो कहते हैं हमारे पाप का हमको दंड दो, परंतु आपका प्रेम कम नहीं होवे। भगवान ने तो छूट दी, अहम तो आ सर्व पापी भी मोक्ष इष्यामि, और अर्जुन ने छूट स्वीकार कर ली। उस समय अर्जुन को यह कहना चाहिए था कि महाराज पाप से क्या मुक्त करो, पाप तो हम भोग करके ही खत्म कर लेंगे, आपके चरणों का अनुराग देव। कितनी ऊंची बात है। भगवान ने गोपियों के सामने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा, गोपियों में पाप था ही नहीं। बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, ऐसी श्रद्धा अर्जुन में नहीं थी। इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान गीता में जो उपदेश देते हैं वो हम लोगों के लिए दिया है। हम तो अर्जुन जैसे भी नहीं है। अर्जुन भी अपने पापों से तो डरा कि पापमेव आश्रयेद अस्मान् हत्वैता नात्वैनः, और अर्जुन मोक्ष भी चाहते थे, गोपियां मोक्ष चाहती नहीं थी। अर्जुन बहुत ऊंचे दर्जे के नहीं थे, लेकिन गीता जिस ढंग से उपदेश देती है वो हम सब के बराबर को लेकर चलती है। हम भी शोक चिंता न हो ये चाहते हैं, पर उच्च श्रेणी का भगत होता है वो नहीं कह सकता। ये बहुत ऊंचे दर्जे का भगत होता है वो भगवान से ये भी नहीं कहता कि आप बड़े क्षमावान हो, दयालु हो, दोषों की तरफ देखते ही नहीं हो, भक्तों के दोष नहीं देखते हो। भरत जी ने कहा है आपका बड़ा मृदुल स्वभाव है, दोष नहीं देखते, पर इनसे भी ऊंचे दर्जे के श्रेणी होते हैं, वो कहते हैं वो ऐसा नहीं कहते, वे दीन बंधु ऐसा क्यों कहें, वो तो ऐसी बात वही कहेंगे कि जिनको कुछ भगवान से चाहना हो, भगवान पाप दूर कर दे, भगवान शोक दूर कर दे, खुशामदी की बात तो वे ही आदमी बोलते हैं जिनको कुछ इच्छा रहती है। हम दया भी नहीं चाहते, आप अनाथों के अनाथों के दीनों के आप नाथ हैं, उन पर दया करो। कोई लखपति आवे और उसको कर लो 2 रुपया ले लो, वह कहेगा क्यों, क्या महाराज आप संत हो, भेंट में है, तो ये दीनों को देव, लखपति को क्या देव। उच्च श्रेणी का जो प्रेम होता है वहां सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, वहां छोटा बड़ा दास तवास्मी भाव ये सब खत्म हो जाता है। वहां माधुरी भाव भी कैसा हो, स्वकीय परकीय भाव भी संबंध नहीं हो, माधुरी भाव भी कैसे हो, भगवान पति है मैं उनकी स्त्री हूं ये भाव भी नहीं, न सख्य भाव है। अब कोई कहे कोई न कोई तो भाव होगा, वो क्या है, वो अति अनिर्वचनीय है, अति अनिर्वचनीय, वहां दो होता ही नहीं है। भाव राज्य में ऐसे डूब जाते हैं कि भक्त और भगवान दो नहीं दिखते हैं, बस भक्ति भक्ति रह जाती है। जैसे 2 हाथ मिल लिया, मिला लिया तो एक हो गए, इसमें बड़ा छोटा कौन। देखने में 2 होते हुए भी 1 है और 1 दिखते हुए भी 2 है। वेदांत के सिद्धांत में तो वस्तु से ही 1 है, पर यहां 1 होते हुए भी 2 है, 2 होते हुए भी 1 है, अब कोई भाव कैसे आएगा। थोड़ा बहुत यदि कोई अंश में लिया जाए तो सखा भाव हो सकता है, बहुत उच्च श्रेणी का जो प्रेम है उस प्रेम में तो वेदांत से भी विलक्षणता आती है। ऐसा अलौकिक प्रेम है, गीता में कहा है सर्वभूत स्थितम योमाम भजत्येकत्व मास्तित है, भगवान में ही बरतता है। ये भिन्नता आ भी जाती है और एकत्व में भी स्थित है, ये एकता है, इसलिए दोनों की बात आ गई। एकता में स्थित होकर भजना एक बहुत विलक्षण उपासना है, प्रभु से मिलकर मिला ही रहना ये उपासना है, वहां प्रभु नहीं कहा जाता, एकता है। प्रेमी प्रेमास्पद प्रेम भेद नहीं है, ये अभेद प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें गुण रूप प्रभाव बहुत पीछे छूट जाते हैं, जैसे राजा के खास महल में जाने पर नौकर चाकर सब बाहर रह जाते हैं। गोपियों का माधुर्य भाव है, ये जो उच्च श्रेणी की बात है वहां गोपियां तो पैरा देती है, वहां तो प्रभाव गुण कुछ भी नहीं है और प्रभाव गुणमय स्थिति भी है। वह तो ये मानता है कि भगवान के प्रेम को लेकर प्रेम है, तब तो भगवान कोई दामी चीज नहीं, प्रभावी दामी चीज हो गई। कितनी बढ़िया बात है, कोई आदमी भगवान के प्रभाव को देखकर प्रेम करता है तो भगवान के साथ प्रेम नहीं है, वो तो भगवान के साथ प्रेम नहीं, वो प्रभाव के साथ दाम प्रेम है, वो प्रभाव दामी हो गया। जैसे कोई मिनिस्टर से प्रेम करता है तो वो मिनिस्टर बड़ा नहीं है, मिनिस्टर के पास में जो पद है उस कारण से वो बड़ा है, वो स्वार्थी है। गुणवान समझकर प्रेम करते हैं वहां पर गुण बड़े हैं, गुण समझकर प्रेम करना तो पतिव्रत धर्म से भी नीचा है। आज सेठ जी क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान में भी यदि गुण समझ करके प्रेम करोगे तो पतिव्रत धर्म से नीचा है, वो भी कोई ऊंची बात नहीं, पतिव्रत धर्म ऊंचा है। क्योंकि स्त्री पति के साथ प्रेम करती है केवल पति समझ के करती है, गुण समझ के नहीं करती। क्योंकि स्त्री देखती है मेरा पति कैसा भी हो, वो मेरा पति है, उससे प्रेम करना पातिव्रत्य धर्म है। पूर्ण प्रेम की जहां बात होती है वहां जैसे दो हाथ हैं कोई भी भेद नहीं है। भगवान में और प्रेमी में कोई भेद नहीं है, पूर्ण प्रेम में भगवान में कोई विशेषता नहीं दिखती। भगवान भक्ति और भक्त तीनों एक हो जाते हैं। मैं आपको क्या क्या कह गया हूं फिर भी एक आना नहीं, आधा आना भी नहीं, एक पैसा भी नहीं कहीं गई। वास्तव में जो बात है वो समुद्र के समान है, मन में आए वो बूंद के समान है, वाणी के द्वारा है वो अणु मात्र के समान है। ये बात मैं आपको जन्म भर भी कहूं तो भगवान के प्रेम सागर की एक बूंद भी नहीं होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि आप हम सब लोगों का जीवन इसी चर्चा में बीते और आगे बात कह रहूं, उल्टा अर्थ मत लगाना, अपने को भगवान से मिलने की भी जरूरत नहीं है, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं, बस ऐसी चर्चा होती रहे ये, बस इसी में जीवन बीते। भले ही मुक्ति न हो, भले ही नरकों में जाए, भले ही किसी भी जोनी में पड़े रहें, ये चर्चा होती रहनी चाहिए। मुक्ति की अथवा भगवान की किसी भी परिस्थिति की इच्छा मत करें, इच्छा न करें। यद्यपि ये इच्छा अच्छी है पर अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो बहुत आगे की बात बता रहा हूं। आप भगवान के प्रेम के सामने सब इच्छाओं को छोड़ दीजिए, अपने आप सब स्थिति बन जाएगी। पर उसको लक्ष्य करके साधन करोगे तो विलंब होगा। भगवान के प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, भगवान के प्रेम के सामने भगवान भी नहीं है। ये भावना हो तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। भगवान मिले, भगवान की प्राप्ति की इच्छा की अपेक्षा प्रेम मार्ग में चलो, भगवान की प्राप्ति की इच्छा मत करो, प्रेम करते रहो। भगवान आपसे मिलने के लिए गरज करे, ये भी इच्छा मत करो। आज आप लोगों से बहुत ऊंचे दर्जे की वार्तालाप हुई है, ऐसी वार्तालाप कमी होती है। बहुत उच्च श्रेणी का वार्तालाप हुआ है, ऐसी वार्तालाप भगवान स्वयं सुनने के लिए ललचाते रहते हैं। ऐसी वार्तालाप सुनने को मिल जाए धन्य मानना चाहिए। कोई धक्का देकर जूता मारकर निकाले भी तो भी कहना चाहिए कि नहीं, इस बात को तो आप मुझे सुनने दीजिए, पीछे पड़ जाए, चिपक जाए इन बातों के। भगवान भी आने लगे, कहने लगे ये चर्चा क्यों करते हो, मैं ये चर्चा नहीं करने दूंगा। तो भगवान को भी कह दो कि नहीं, हम तो यही चर्चा करेंगे, आप कहीं जाना है तो जा सकते हो। कहीं यदि ये कानून पास करना पड़े क्या बात है, कहीं यदि ये कानून पास करना पड़े है कि हमारी इस चर्चा में भगवान नहीं आ सकते, पहले हमको बात करने दो, ये चर्चा चलने दो, ये चर्चा समाप्त हो तब भगवान आओ, यदि ऐसा कानून बनाना पड़े तो कानून बना दो। लेकिन ये प्रेम की चर्चा मत छोड़ो। ऐसी बात होती है तो भगवान संकोच में पड़ जाते हैं, भगवान उनको विजय प्रदान करते हैं। और साधक की ये विजय बहुत काम की होती है, असली बात है, प्रेम की बात है। राजा साहब, सीतामऊ के राजा आते थे सेठ जी के सत्संग, कि आज बहुत बढ़िया बात सुनाई है। सेठ जी ने कहा, राजा साहब ये तो अभी भूमिका ही बताई है, इसके अलावा भी बातें बहुत हैं। राजा साहब कान में तो पड़ती है ना, हम तो आपके दया के भिखारी हैं। सेठ जी, अपने तो इतनी बात हो जाए वही बहुत है। जन अवगुण प्रभु देखन काहू, अपने तो भीख मांगने के लिए भी तैयार हैं, किसी से भी भीख मांग लेगी, ये बातें सुनाओ, इन बातों में रहने दो, इन्हीं बातों के बीच में हम बैठे रहे। राजा साहब कहते हैं बड़ों की बातें सुनने से मन बड़ा द्रवित होता है। अब सेठ जी आगे दूसरी बातें कहेंगे, बहुत बढ़िया लेख, बहुत ही बढ़िया लेख।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्